आज की मुरली है 29 जनवरी सन 67 का प्रातः क्लास। शिव भगवान वाच। भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य को नहीं कह सकते, क्या जानवर जानवर को कह सकते हैं? भक्तिमान हुए तो जानवरों को भी भगवान का अवतार बताई दिए। घोड़े का अवतार, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, फिर किसको कहा जाता है भगवान का अवतार? भगवान वाच मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मन मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। मनु अर्थात ब्रह्मा, जिसको मन है, बहुत चलायमान। और मनु की औलाद कहे गए मनुष्य। जब मनु को मन है तो मनु की जो औलाद होगी उसका भी मन जरूर चलायमान होता होगा। तो जिनका जिनका मन चलायमान है वो मनुष्य विकारी हुए या निर्विकारी हुए?
विकारी
हुए। तो इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। फिर किसे कहा जा सकता है भगवान?
जिसका
मन अपने पूरे कंट्रोल में हो। यूं कहें कि बुद्धि ही पूरी 100% काम करती हो, मन के चलायमान होने की बात ही नहीं, उसको कहेंगे भगवान। और जिसके मन है, मन चंचल है, तो उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? उनका मन तो चंचल नहीं होता है। देवताओं को इसलिए भगवान नहीं कहा जा सकता कि वो उत्तरोत्तर सब नीचे गिरते रहते। भगवान कभी गिरती कला में नहीं जाता। भगवान तो एक ही निराकार है। क्यों? आत्माएं सब निराकार नहीं है,
है? तो
आत्माएं भी तो निराकार है।
साकारी चोला लेती है आत्माएं,
साकारी चोला लेती है, भगवान भी साकारी चोला लेता है।
लेकिन वो अंतिम समय पूरे 84 जन्म के बाद
नहीं, वो देवान में नहीं है, निराकारी स्टेज में है। माने है तो वो भी बिंदु, सुप्रीम सोल भी बिंदु है, आत्माएं भी जो भी है मनुष्य मात्र सब बिंदु है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब सब की आत्मा बिंदु है। लेकिन अंतर क्या है? उनको देह का भान नहीं, देह की आकर्षण नहीं। किनको? भगवान। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कन्नड़ मुल्ली में कहा है साकार को भी भगवान नहीं कहेंगे, निराकार को भी नहीं कहेंगे, आकारी को भी
नहीं।
भगवान नहीं कहेंगे, फिर किसे कहेंगे? इसी मुरली का अनुवाद होगा कन्नड़ में। उसका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है, वो आत्मा साकार रूप धारण नहीं करती और सूक्ष्म शरीर भी धारण नहीं करती। सूक्ष्म शरीर तो वो धारण करते हैं जिनकी अकाले मौत
होती
है। भगवान की तो अकाले मौत होने की बात है ही नहीं। सूक्ष्म वतन वासियों को सूक्ष्म आकार है, भगवान को सूक्ष्म आकार की नहीं, और सूक्ष्म मतन में आता ही नहीं, कहाँ आता है? वो तो साकार सृष्टि पर आता है, साकार तन में प्रवेश करता है। सूक्ष्म वतन वासियों को सूक्ष्म आकार होता है, इसलिए उनको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहां साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल पांच तत्वों का शरीर नहीं होता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं होते, ये पांच तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं माटी का पुतला। सूक्ष्म वतनवासियों को माटी का पुतला नहीं कहेंगे। माटी का नहीं कहेंगे तो किसका कहेंगे? तो सूक्ष्म प्रकाश है, इसको कहते हैं माटी का पुतला। देवता धर्म वाले भी मनुष्य हैं, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुणों वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। पहले इन देवताओं में भी दैवी गुण नहीं थे। दैवी गुण वाले मनुष्यों में और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय में रहने लायक और मनुष्य ही वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। जो शिवालय में रहने लायक बनते हैं उनको कहा जाता है देवता, और जो वैश्यालय में रहने लायक बन जाते हैं वो देवता नहीं कहे जा सकते, दैत्य है। वैश्याले भी ये भारत बनता है और शिवालय भी
भारत ही बनता है।
ये भारत ही बनता है, जड़ भारत भी बनता है तो चैतन्य भारत भी
बनता है।
सत्युग को कहा जाता है शिवालय, शिवालय भी यही भारत बनता है, वैश्याले भी यही भारत बनता है, सतयुग भी यहाँ होता है। कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन में सतयुग नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो वो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ युग है कौन सा? सत्य का युग। कब स्थापन किया? संगम युग में दस हजार दो दस साल कम कहां की बात है? दस साल कम तो 67 में बताया, 66 में बताया था है? अभी तो 66 है और उसके बाद 10 साल जोड़े तो 77 है, वो खत्म हो गई बात। कब स्थापन किया? संगम युग में। ये दुनिया है पतितमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जो सतो प्रधान थी वो ही अब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। तमो प्रधान दुनिया ही फिर सतो प्रधान बनती है। कैसे बनती है तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया कैसे बनती है?
साकर में आते हैं
योग बल,
योग बल से सतो प्रधान बनती है। तुम बच्चों के योग बल से बनती है क्या?
बच्चों के योग बल,
तुम बच्चों के योग बल से, उन बच्चों के योग बल से नहीं बनती है। तुम किसे कहा जाता है? जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए कहा कि तुम बच्चों के योग बल से ये दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। योग बल से ही तुम विकर्म विनाश करते हो और पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए जरूर फिर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया को बाप स्थापन करते हैं, प्रैक्टिकल में स्थापन करते हैं या हवा में स्थापन करते हैं? प्रैक्टिकल में स्थापन करते हैं। प्रैक्टिकल दुनिया भी चाहिए और स्थापन करने वाला भी प्रैक्टिकल चाहिए। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? पवित्र दुनिया कौन स्थापन करते हैं?
दादा दादिया।
उन ब्राह्मणों का कहना है कि पवित्र दुनिया हम स्थापन करते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो ब्राह्मण होते थे वो भी क्या समझते थे कि हम जो कर्म कांड करते हैं इन कर्म कांडों से ये दुनिया नहीं बन जाएगी। बाप कहते हैं पवित्र दुनिया को स्थापन करने का काम सिर्फ मेरा है, ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये पांच विकार ही न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करेगा? पांच विकार होते हैं तो दुखी होते हैं, दुखी होते हैं तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही दुख हरता सुख करता। दुख करता रावण है, मैं सुख करता हूं और दुख हरता हूं, और रावण
दुख हरता
है, रावण दुख करता है। पांच विकारों का पुतला बनाई दिया है। पांच विकारों का पुतला बनाई दिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बस इन पांच सिरों का पुतला है। हैं? दस सिर होते हैं कि पांच विकार होते हैं सिर्फ? फिर
प्रकृति के और पांच पुरुष के,
हाँ प्रकृति भी तामसी बनती है। प्रकृति के पांच तत्व भी तामसी बनते हैं। दस शीशों का ये पुतला है, इस रावण को दुश्मन समझ करके जलाते हैं। पुतला किसका बनाया जाता है?
रावण।
रावण का तो बनाया जाता है,
चरित्र किया,
कोई चित्र बनाया जाता है,
चरित्र
किया, कोई चरित्रवान हुआ है, कोई चरित्र करने वाला हुआ है तो उसका चित्र बनाया जाता है। तो जरूर है रावण का पुतला दस सिर का बनाते हैं तो जरूर कोई दस सिर संगठित होकर के कार्य करते हैं, तो उसे दुश्मन समझ करके जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से जलाते हैं। क्या कहा?
द्वापर आदि से
नहीं, द्वापर आदि में तो फिर भी बहुत सत्यता थी, जो शास्त्र थे उनमें भी सच्चाई थी। बाद में जब शास्त्रों में जो मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें कृष्ण का नाम डाल करके उसे साकारी के द्वारा बनाया हुआ घोषित कर दिया, साकार भगवान बना दिया, निराकार को उड़ा दिया। तो गीता में ये जो भूल हो गई, जब से जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है तब से सारी दुनिया नीचे गिरने लगी, तब बहुत तमो प्रधान बनते हैं। कब?
जब नीचे गिरे,
जब गीता माता का पति कृष्ण को बनाई दिया। गाली हो गई ना? जब बहुत तम प्रधान बनते हैं तब कोई मत मतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। क्या? कि गीता का भगवान, गीता का भगवान निराकार नहीं है,
साकार है,
साकार है, और कृष्ण का नाम डाल दिया। पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण का नाम साकार उपासियों ने डाल दिया। जब कोई बहुत दुख देते हैं तो फिर उनकी एफजी बनाते हैं। होता है ना दुनिया में, कोई नेता बहुत ऐसे कड़क कड़क कानून निकालता है
उसके
बहुत परेशान करता है तो उसकी एफजी बनाते हैं। तो यहां भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है कौन से युग में,
कलयुग
में, तो ये रावण बनाते हैं। माने द्वापर में ना रावण बनाते थे ना रावण को जलाते थे ना रामलीला खेलते थे। जब बहुत तमो प्रधान बनते हैं तो रावण का पुतला बना करके रामलीला
खेलते।
तुम बच्चों को पौना सुख है और चौथाई हिस्सा दुख मिलता है। उन बच्चों को नहीं, माने किन बच्चों को, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, बाप से डायरेक्ट बैठ करके ज्ञान नहीं सुनती है, वो ज्यादा दुख, आधा दुख और आधा सुख भोगती है। और तुम बच्चे पौना हिस्सा सुख भोगते हो और चौथा हिस्सा दुख भोगते हो। माने कलयुग जब होता है तो कलयुग में आकर के तुम नंबर वार दुखी होते हो। अगर आधा सुख और आधा दुख हो तो फिर भगवान का बच्चा बनने से मजा ही क्या हुआ। तो कोई फायदा ही नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा ये देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, यह देवता धर्म सिवाय बाप के और कोई स्थापन नहीं कर सकता। और धर्मों में जो आत्माएं कन्वर्ट होकर के चली जाती है वो फिर बहुत दुखी होती रहती है। इसलिए अपने धर्म में रहना अच्छा है, दूसरे का धर्म नहीं अपनाना चाहिए। और जो स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है, जो देवताओं का धर्म है, वो सिवाय बाप शिव के और कोई स्थापन नहीं करता। जो एक ही स्थापन करने वाला है तो एक से ही बैठ करके सुनना चाहिए। अगर अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान व्यभिचारी होगा तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी
हो जाएगा,
होना पड़ेगा। ये सृष्टि तो अनादि बनी हुई है, ये कोई पूछ नहीं सकते कि ये सृष्टि क्यों बनी और कब बनी और फिर कब पूरी होगी। ये चक्र तो फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए, तो जरूर संगम युग भी होगा। क्यों लाखों वर्ष लिख दिए?
हिसाब देने के लिए न दे सकते।
हाँ, इसलिए लाखों वर्ष लिख दिए कि अगर थोड़ी आयु लिखेंगे तो लोग पूछेंगे 84 जन्म कैसे कैसे हुए, किस किस युग में हुए, वो तो उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए वो लिप्पा करने के लिए उन्होंने देवताओं के वर्षों से उनको गुणा कर दिया।
हम तो बदल सकते ना अभी।
तो लाखों वर्ष लिख दिए हैं। जब सृष्टि बदलेगी तो संगम युग जरूर होगा। बिना संगम हुए युग हुए सृष्टि बदल नहीं सकती। अब जैसे कि तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं है। जैसे सृष्टि के चक्र को हम समझते हैं और कोई समझ नहीं सकते। इतना भी नहीं समझते कि राधा कृष्ण बचपन में होते हैं, फिर शादी होती है तो लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलता है, दिखाते भी हैं, बगीचे में मिलते थे। ये नहीं जानते कि दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। अलग अलग राजधानी की
सूर्यवंशी और चंद्रवंशी।
ये संगम युग में जब बाप आकर के सूर्यवंश की स्थापना करते हैं तो सूर्यवंश में कृष्ण पलता है, बल कंस का राज्य भी होता है। जब कंस पलता है, जब कृष्ण पलता है तो उस समय कंस का राज्य भी होता है। कृष्ण को छुप करके गुप्त रूप में पाठ बजाना पड़ता है, किसके डर से? कंस के डर से। तो कृष्ण भगवान हुआ क्या है?
नहीं,
कृष्ण भगवान
नहीं,
नहीं है। फिर राधा को अलग राजधानी का दिखाया है, तो राधा अलग राजधानी की क्यों? क्योंकि बाप जब आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं तो सूर्यवंशी तुम बच्चे ही इस पढ़ाई को पढ़ते हो। जिनकी सूर्यवंशी राजधानी तैयार होती है उस राजधानी में कृष्ण बच्चा पलता है। ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा की राजधानी में उनके फॉलोअर्स उस कृष्ण में कृष्ण को जानते ही नहीं। कृष्ण की पहचान किसको होती है? सूर्यवंशियों को होती है। और राधा की पहचान किसको होती है? चंद्रवंशियों को होती है। तो दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर इनका स्वयंवर होता है, किनका? राधा और कृष्ण का। शास्त्रों में जो स्वयंवर की प्रथा दिखाई है वो किस समय की यादगार है? सतयुग की या त्रेता की? सतयुग त्रेता में तो कोई स्वयंवर होने की बात है ही नहीं, स्वयंवरण करने की बात ही नहीं। यहां संगम युग में दो अलग अलग राजधानियां, एक चंद्रवंश और एक
सूर्यवंश।
एक बेसिक नॉलेज का ग्रुप होता है जिन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज का ही ज्ञान है, वहां राधा पलती है, ज्ञान जैसे जीरो। और कृष्ण जहां पलता है वो सूर्यवंश, रोशनी ही रोशनी, सूर्य की रोशनी ही रोशनी होती है अंधेरे का समाज में। कोई प्रश्न पूछा जाए चंद्रवंशियों से षष्ठी चक्र के बारे में तो उनसे कोई जवाब
नहीं मिलेगा,
या तो लताड़ के भगा दे गए तुम तुम शंकर पार्टी हो। सभा में कोई प्रश्न नहीं करना, बाद में पूछना, और जब बाद होता है तो सरकार देते हैं। तो वो है अंधेरे में, ज्ञान चंद्रमा कब अस्तित्व में आता है? दिन में या अंधेरे में? अंधेरे में। और तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो, तुम जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हो तो तुम्हारे में रोशनी ही रोशनी ज्ञान की भरी हुई है। तुम जानते हो कि जो अलग अलग राजधानी के राधा कृष्ण है उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या वो तथाकथित बेसिक नॉलेज वाले इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकते? किन बातों की गहराई को? ओ तो लगा देंगे सतयुग में, सतयुग में तो एक ही वंश होगा या दो वंश होंगे? हाँ, तो एक ही वंश होता है, फिर दो वंश की तो सवाल की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहाँ फ्रिक्शन पड़ता है?
संगम,
संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया जब स्थापन होती है तो सूर्यवंश और चंद्रवंशी ये दो बड़े बड़े वंश बन जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया। और कब से बनते हैं? नहीं, यज्ञ के आदि से ही, यज्ञ के आदि से ही ये फ्रिक्शन पड़ गया। विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? कौन निमित्त बने? यज्ञ के आदि से ही, स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी
प्रज्वलित।
बाप ज्ञान सूर्य और माँ
चंद्रमा,
चंद्रमा दोनों के बीच में फ्रिक्शन पड़ा, फ्रिक्शन डालने के निमित्त इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले बच्चे थे, जो उस समय इकट्ठे हुए थे, वो निमित्त बन गए फ्रिक्शन डलवाने में। तो सूर्यवंशी अलग हो गए और चंद्रवंशियों ज्ञान चंद्रमा की रहबरी में सारे ही पलने लगे। कौन कौन? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन ये ज्ञान चंद्रमा की रहबरी में पलने लगे। क्यों?
क्योंकि
सूर्य क्यों अलग हो गया और सूर्यवंशी बच्चे क्यों अलग हो गए?
सूरज की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते नहीं।
भारत की सरकार को जब स्वतंत्रता मिली थी तो स्वतंत्रता लेने से पहले, चलो मिली तो झूठी ही स्वतंत्रता, लेकिन वो स्वतंत्रता जो नाम मात्र की भी मिली, वो स्वतंत्रता लेने से पहले दो दल थे, एक नरम दल एक गरम दल। गांधी जी का दल कैसा था?
नरम
दल। और सुभाष चंद्र बोस का दल कैसा था? गरम दल। उनका कहना था दुनिया में जितनी भी राजाइयां स्थापन होती है लड़ाई करके होती है, लड़ाई से राजाई हम लेते हैं, हम झुक करके राजाई लेने वाले नहीं है। और गांधी जी क्या कहते थे? कोई एक तमाचा मारे। तो जो सही राजाई हमको मिलनी चाहिए वो राजाई मिल नहीं सकती। बहुत मीठा भी अच्छा नहीं होता और बहुत कड़वा भी अच्छा नहीं होता, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो चले गए और जो चंद्रवंशी थे वो ज्ञान चंद्रमा के रहबरी में सारे ही पलते रहे। और तब से पलते 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 और जब तक ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद अभी भी
पल रहे,
चंद्रमा की रहबरी में ही पल रहे ज्ञान चंद्रमा। ब्रह्मा अभी भी गुलजार दादी में प्रवेश करके उनको परवरिश दे रहा है। तो ये सब बातें बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं और कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। बाप ही ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो जानी जानना हार है, सबके दिलों को जानने वाला है। नहीं, वो जानी जानना हार नहीं है। एक एक के दिल को जान करके क्या करेंगे? जानने की जरूरत है
नहीं।
या तो कहते हैं सब में वो ही व्यापक है। अब तुम बच्चे समझते हो बाप तो आकर के नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अब तुम पढ़ रहे हो, छी छी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हारी जब पढ़ाई होगी पूरी, पढ़ाई पूरी होगी तो तुमको इस छी छी दुनिया में रखा नहीं जा सकता। जिनकी जिनकी पढ़ाई पूरी होती जाएगी उनका ट्रांसफर होता जाएगा। छी छी दुनिया में राज नहीं कर सकते, राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे। संगम युग पर ही बाबा सिखाते हैं, ये बेहद की बात है। क्या कि राजयोग संगम युग पर सिखाते हैं, कलयुग में
नहीं।
या सतयुग में
नहीं
सिखाते। अच्छा, ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे, संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे, तो ये थोड़े कह सकते हैं कि उस समय संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे, तो ये थोड़े कह सकते हैं कि उस समय ज्ञान संपन्न स्टेज में था।
नहीं था।
अगर ज्ञान संपन्न स्टेज में होता तो जो बच्चे सूर्यवंशी छोड़ करके चले गए वो जाते ही क्यों? आदि में पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ करके चले गए। अंत में फिर वही बच्चे फिर आते हैं और जो गीता ज्ञान मिला ब्रह्मा के मुख से गीता माता आई, उस गीता माता का जो निचोड़ है उसको मंथन किया, तो मंथन करने से जो गीता ज्ञानामृत बनता है, उस गीता ज्ञानामृत के बनने से बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान समा जाता है। उस समय कहेंगे पुरुषोत्तम संगम, क्या
पुरुषोत्तम,
जब पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने वालों का नंबर वार ज्ञान होना शुरू होता है। पुरुषों में उत्तम बनने वाले कौन कहेंगे, पुरुषों में उत्तम बेसिक नॉलेज वाले कहेंगे, पुरुषों में उत्तम बनने वाले ब्रह्मा बाबा। अगर पुरुषों में उत्तम बनने वाले ब्रह्मा बाबा हो और उनके फॉलोअर्स हो तो सारे ही जितने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ रहे हैं और छोड़ते रहेंगे, जब विनाश होगा तो ढेर सारे हार्ट फेल करेंगे, दुनिया में भी ढेर सारों के हार्ट फेल होंगे, क्योंकि अभी तो बड़ी बड़ी ऊंची प्लानिंग बनाते चले जा रहे हैं, बड़ा बड़ा धन संपत्ति धनाढ्य बनते चले जा रहे हैं और अचानक होगा विनाश, तो क्या होगा उनका हार्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसे जो हार्ट फेल होने वाले हैं उनको कोई ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता, जो योगी तू आत्मा होगी मुरली में बोला उनका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, उनका हार्ट तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले, तो ब्रह्मा बाबा को तो विनाश का साक्षात्कार हुआ था तो रोना ही शुरू कर दिया। तो जिन आत्माओं में जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं कहे के असत्य से टकराने के युद्ध करने के, वो तो विनाश की विभीषिका से डरने वाले नहीं है। तो संगम ऊपर बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं, ये बेहद की बात है। माना क्या बेहद की बात है, संगम युग जो है वो जिसे हम कहें संगम युग, वास्तव में वो तब शुरू होता है जब पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं नंबर वार प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। बाप आते ही है, जब आते हैं तो क्या होता है ये कोई को पता नहीं है। घोर अंधेरे से घोर सोजरा होता है, तो घोर अंधेरा कब था, 76 में था घोर अंधेरा ब्राह्मणों की दुनिया में, और 76 के बाद धीरे धीरे सूर्य जो है जो एकदम पाताल में चला जाता है वो फिर ऊपर आना शुरू होता है। तो जैसे कि सूर्योदय शुरू हो गया तो और कोई को पता नहीं है, घोर अंधेरा से घोर सोजरा होता है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो अपन को सूर्यवंशी कहलाते हैं, वो स्थूल सूर्य की बात, स्थूल जापान वाले हैं बौद्धि, जापान चीन जापान जो खंड है वहां जो रहने वाले हैं वो बौद्धि धर्म के लोग हैं मोस्टली। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो अपन को सूर्यवंशी कहलाते हैं, वास्तव में सूर्यवंशी तो देवी देवताएं होते हैं, वो बौद्धि सूर्यवंशी नहीं होते। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में होता है, ऐसे नहीं महात्मा बुद्ध जब आए तो सूर्यवंश शुरू हुआ, नहीं। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा तो भक्ति मार्ग का अंधेरा विनाश हो जाता है, नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया बनती है। ये बेहद का बड़ा घर है, कितना बड़ा मांडवा है, सूरज चांद सितारे कितना काम करते हैं, क्या सबसे ज्यादा काम कौन करता है?
सूर्य।
जो भी मनुष्य सृष्टि है या जो भी प्राणी मात्र है, उन प्राणी मात्र की सबसे ज्यादा सेवा करने वाला सूर्य है, सबसे जास्ती सेवा करने वाला फिर नंबर वार सितारे और चांद, ये भी बेहद की बात है। क्या जैसे हद की दुनिया में है सूरज चांद सितारे, वैसे बेहद की दुनिया में भी कोई ज्ञान सूर्य है, कोई चांद है, कोई सितारे। 29 जनवरी 1967 की वाणी का दूसरा पेज। रात्रि को बहुत काम चलता है, क्या रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजाए लोग हैं जो दिन को सो जाते हैं और रात्रि को सभाएं आदि लगाते हैं। संगम युग में भी क्या होता है, घोर अज्ञान अंधेरी रात्रि होती है तो उस समय बहुत काम होता है। क्या बहुत काम होता है? ज्ञान का सारा मनन चिंतन मंथन कब होता है? जब ज्ञान अज्ञान की घोर अंधेरी रात्रि होती है उस समय बहुत मनन चिंतन मंथन चलता है। तो कई राजा ऐसे होते हैं जो रात्रि में सभाएं आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं, अभी तक भी कहीं कहीं चलता है। मिल साज में भी रात को काम चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है हद के दिन और रात, और वो है बेहद की बात। ये बातें तुम्हारी सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं आती है, शिव बाबा को भी वो जानते नहीं है, और तुम शिव बाबा को जानते हो। अपने को ही शिव ओम कह करके वो तो भूल जाकर आते रहते हैं। क्या वो क्या करते हैं?
शिव ओम कहते हैं।
कैसे वो कहां कहते हैं? अपन को शिव ओम
शंकराचार्य
वो तथाकथित ब्राह्मण। अच्छा शंकराचार्य, वो तो बाहर की दुनिया के हो गए। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी तो कोई है जो त्रिमूर्ति शिव बन करके बैठते हैं चित्र छपा छपा के, कि हमें ही तीन मूर्तियां शिव है, कोई अलग से ब्रह्मा, कोई अलग से विष्णु, कोई अलग से शंकर नहीं होता। त्रिमूर्ति शिव की बात नहीं। तो शिव ओम कह के अपनी पूजा कराते रहते हैं। इनको कहेंगे 5 तत्वों की पूजा। बाप हर बात समझाते हैं, ब्रह्मा के लिए ही समझाया जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि पर आते हैं तो जरूर किसी में प्रवेश करेंगे। इसकी बात बताइए, प्रजापिता ब्रह्मा की बात बताइए। आवेंगे तो पहले किस में प्रवेश करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में, कलयुग अंत में तो पतित होते हैं, भ्रष्टाचारी मनुष्य होंगे तो किस में प्रवेश करेंगे? पावन में प्रवेश करेंगे या पतित में प्रवेश करेंगे? भ्रष्टाचारी अर्थात जो विख मूत से पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी माना जो भ्रष्ट इंद्रियों से विख से मूत से पैदा होते हैं उनको कहा जाता है भ्रष्टाचारी। और सतयुग त्रेता में मूत की पैदाइश ही नहीं रहती। यहां बाप आकर के जो राजयोग सिखाते हैं उससे प्रैक्टिस करते करते जो अभी बुद्धि नीचे की इंद्रियों में जाती है वो बुद्धि सारी ऊपर चढ़ जाती है, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। जब ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं तो जो रग है विकारों की, भ्रष्ट इंद्रियों के आकर्षण की, वो रग समाप्त हो जाती है, तब सतयुग शुरू होता है। मनुष्य कहेंगे भला मूत बिना सृष्टि कैसे चलेगी? अरे देवताओं को तो कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से इनके मंदिर बनाते हैं, ब्राह्मणों के बिना कोई मूर्तियों को छू भी नहीं सकता, हाँ कोई पैसे देते हैं तो फिर उनको अलाउ कर देते हैं। कौन अलाउ कर देते हैं? जो भ्रष्टाचारी पुजारी उजारी है तो वो फिर पैसा लेकर के उनको अलाउ कर देते हैं। आजकल ठगी तो हर जगह, समझो किसी मंदिर में राजा आते हैं, अब है तो वो भी भिखारी। कोई मंदिर में राजा आता है वो भी भिखारी, परंतु उनको मना कोई करे कैसे करेगा? भिखारी दुनिया में तो सभी भिखारी हैं। वास्तव में देवताओं को भिखारी कोई टच कर न सके, किन देवताओं को, किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मीनारायण का चित्र बाजू में होता था तो बोला इन देवताओं को टच कोई
कर न सके।
परंतु आजकल पैसों से सब कुछ होता है, आजकल होता है। जब लक्ष्मीनारायण बनकर के तैयार होंगे प्रैक्टिकल में तो पैसों से काम चलेगा?
नहीं।
उनको फिर टच करने देंगे?
नहीं।
कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो ब्राह्मणों को जरूर बुलाते हैं। अब भिखारी तो वो ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है, ये तो दुनिया ही भिखारी है, तो प्रजा भी भिखारियों से ही होती है। निर्विकारी कहां से आवे? निर्विकारी होते ही है सतगुरु। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते हैं उनको भिखारी कहेंगे, जो विकार में नहीं जाते हैं उनको विकारी नहीं कहेंगे। क्या जो विकार में नहीं जाते हैं, बहुत से सन्यासी हैं विकार में नहीं जाते हैं तो उनको निर्विकारी देवता कहेंगे या विकारी कहेंगे?
विकारी
है तो वो भी विकारी। क्यों विकारी है?
मजबूरी,
वो तो विकार में नहीं जाते,
मजबूरी
है,
घर से बाहर भाग के जाते हैं।
मनसा अच्छा लगे,
मन में तो भ्रष्ट संकल्प चलते हैं ना, तो जब मन में चलते हैं तो बीज तो अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा वो तो बाहर की दुनिया की बात हुई, ब्राह्मणों की दुनिया की बात,
घर
ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मण है जो समझते हैं कि हम तो बड़े पवित्र हैं, ये तो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले हैं, गृहस्थियों को बहुत नीची नजर से देखते हैं, अपन को पवित्र समझते हैं। बाबा कहते हैं ये सब सब भिखारी है, इनका मन ज्यादा ही विकृत है, शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है, निर्विकारी पैदाइश तो नहीं है ना, हद में भी ये शरीर विकार से पैदा होता है। और जब ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई मुखवंशावली और कोई कुकवंशावली होती है। जो मुखवंशावली है वो तो निर्विकारी पैदाइश ब्राह्मणों की हुई, क्या मुखवंशावली अर्थात जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें हैं, उन बातों के ऊपर विशेष मनन चिंतन मंथन करने वाले और उसके आधार पर अपने जीवन की नैया को चलाने वाले मुख वंशावली, मुख की निकली हुई बात को फॉलो करते हैं, देह की तरफ उनका आकर्षण
नहीं
होता। और जो ऐसे हैं
कुकवंशावली
जो मुरली को कोई महत्व नहीं देते, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को कोई महत्व नहीं देते, ये मुरली की है, ये बातें हमसे मत करो, हमने बहुत मुरली सुनी है। वो सिर्फ है जो कुह की वंशावली है, जो ब्रह्मा की कोख ब्रह्मा की गोद है उसको याद करने वाले। तुम बच्चे ब्रह्मा की कोख को याद करते हो या ज्ञानदाता ज्योतिबिंदु शिव को याद करते हो? तुम शिव को याद करते हो और वो कुकवंशावली ब्राह्मण है वो कुह को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? तुम क्यों नहीं करते? तुम क्यों क्यों नहीं करते कुहु को याद, गोद को याद? और वो गोद को याद क्यों करते? उन्हें बार बार वो गोद क्यों याद आती?
मुरली की ओर ध्यान नहीं देते?
नहीं,
सरकट वो उधर गई।
हाँ, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से गोद का सुख लिया है उनको वो गोद याद आती है। और तुम तो ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद ही ज्ञान में आए हो। यज्ञ के आदि में थे उस समय ब्रह्मा बाबा यज्ञ के सरपरस्त नहीं थे। यज्ञ के आदि में जब तुम छोड़ करके आए थे उस समय ब्रह्मा बाबा सरपरस्त नहीं थे, और बाद में जब तुम आए तो उस समय ब्रह्मा बाबा का शरीर मम्मा बाबा का शरीर छूट गया। तो तुमने गोद का सुख लिया ही नहीं तो याद क्या आवेगा? इसलिए तुमको निराकार याद आता है, उनको वो साकार साकार याद आता है। तो कोख याद आती है तो वो उनका कोख से प्यार हो गया। मुख से निकली हुई वाणी के ऊपर वो पहले भी ध्यान नहीं देते थे और अब भी ध्यान अगर दिया होता ध्यान तो सारी मुरलियों को संजो करके ठीक से सुरक्षित करके रखते, सारी मुरलियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तुमको महत्व है किस बात का? बाबा के मुख से निकली हुई बातों का, एक एक बात का तुमको महत्व है। इसलिए तुम मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार करने वाले ब्राह्मण हो। और वो मुरली से उनको प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार करने वाले वो सच्चे ब्राह्मण हैं भी नहीं। तो बाप कहते हैं वो ब्राह्मण है और वो सन्यासी, वो सब भिखारी है, कोई भी निर्विकारी इस दुनिया में नहीं है। बाप ने एक ही बात बताई कि ये तो रावण राजा है, यथा राजा
तथा
प्रजा। राज्य किसका है इस दुनिया में?
रावण
का राज्य। मधुवन में भी किसका राज्य? मधुवन में माया रावण आता है या नहीं आता है? जब मधुवन में भी माया रावण आता है उसका राज्य वहां भी चलता है, तो सारी दुनिया में से कोई जगह ऐसी बची है नहीं जहां माया रावण का राज्य न फैला हुआ। यथा राजा तथा
प्रजा,
तथा प्रजा। राम राज्य है निर्विकारी और रावण राज्य है विकारी। सत्यगुरु में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, तुम दिखा सकते हो। सत्यगुरु में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहां 5 विकार नहीं होते, है ही पवित्र राज्य। भगवान स्थापन करते हैं क्या पवित्र राज्य? कोई मनुष्य है जो विकारी मनुष्य होते हैं वो पवित्र राज्य स्थापन नहीं कर सकते, भगवान स्थापन करते हैं। सत्युग में भी अपवित्र अगर होते तो पुकारते ना? सत्युग कोई पुकारते हैं? वहां तो नहीं पुकारते, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कभी याद नहीं करते हैं, परमात्मा की महिमा भी करते हैं, सुख का सागर पवित्रता का सागर मांगते भी हैं कि शांति हो। अब सारी दुनिया में सुलह मनुष्य कैसे कर लेंगे? सारी दुनिया में मित्रता हो जाए, सुलह हो जाए, वो कैसे हो जाएगी? सुलह का राज्य तो एक ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह कराना होता है, लड़ाई खत्म करो, आपस में मिलजुल के मिलके रहो। वहां तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है, इस महाभारत लड़ाई में सबका विनाश होना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? हैं? एक तो संस्कृत की गीता में ही लिखा हुआ है, दूसरा सीढ़ी के चित्र बनाने के लिए बोला कि सीढ़ी के चित्र में लिखो, नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, और ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय। बरोबर, पांडव तो तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो, वो है आत्माओं का घर। अब बाप कहते हैं इस दुखधाम को देखते हुए भूल जाओ, देखते हुए भी ना देखो, बस अब तो हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा ने रियलाइज किया है, आत्मा को अब याद आया है कि मैं आत्मा ऐसी हूँ, कैसी हूँ है, कैसी हूँ,
निर्विकार,
सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी हूँ, इस्लामवंशी हूँ, बौद्धवंशी हूँ, कैसी हूँ, सूर्यवंशी शांत आत्मा हूँ। बाप भी कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ मैंने तुमको समझा दिया। क्या मैं जो हूँ और जैसा हूँ तुमको समझाया है कि मैं बिंदी हूँ, ऐसे और कोई समझा नहीं सकता कि मैं कैसे छोटी सी बिंदी हूँ। और कोई मनुष्य मात्र इतनी छोटी सी बिंदी बनकर के रह ही नहीं सकते, माना? जो भी मनुष्य मात्र है उनको कुछ न कुछ अपना देवान
होता है,
देवान आता है, देवान आता है तो मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, अहंकार में रहते। बाप को कोई अहंकार
नहीं होता
है ही नहीं। तो तुमको समझाया है कि मैं जो हूं जैसा हूं बिंदी हूं, ऐसा कोई समझा नहीं सकता। मुझे 84 जन्मों का पार्ट बजाना है, कौन सी बिंदी को बजाना है 84 जन्मों का पार्ट?
राम वाली सौ
जिसमें प्रवेश करते हैं उसको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए, हमने 84 जन्मों का पार्ट कैसे बजाया। 84 जन्मों में से फर्स्ट जन्म पहले याद आना चाहिए। क्या इस सतयुग जो आएगा उस सतयुग में हम पहले पहले पार्ट धारी होंगे। कौन होंगे पहले पहले पार्टधारी? जिन्होंने इन आंखों से विनाश को देखा होगा वो होंगे, या जिन्होंने देखा ही नहीं होगा वो होंगे?
जिन्होंने देखा होगा,
जिन्होंने पूरे विनाश, जिन्होंने पूरा अंत देखा, अंत किया माना सब कुछ किया, और अंत नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो जो आदि में थे वो फिर अंत में भी होते। इसमें बाप भी याद आवेंगे, घर भी याद आवेगा, चक्र भी याद आवेगा। इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो, कितने खंड हैं, इन खंडों की आपस में कितनी लड़ाइयां आदि लगी, कितने खंड है? भारत खंड, इस्लामी खंड, बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड, इनकी आपस में कितनी लड़ाइयां लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात नहीं होती, वहां तो एक ही भारत खंड होता है, दूसरा कोई खंड और दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। यह है बिल्कुल नई बात है। वो तो कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, तो मनुष्य अंधेरे में रहते हैं, रात दिन का रोला पड़ गया है, रात माना अंधेरा, दिन माना सूझरा, तो फर्क हो गया ना। हरेक बातों में कहते हैं रात दिन का फर्क है, यह है बेहद की रात और बेहद का दिन, इनमें भी कितना फर्क है, कहां तो राम राज्य है और कहां रावण राज्य, वो है ईश्वरीय राज्य और ये है रावण का आसुरी राज्य। बाप कहते हैं अब तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो। क्या जैसे कि क्यों लगा दिया?
सन्मुख बाप पढ़ रहे।
अब तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, जैसे कि
जैसे पहले थे,
पहले भी थे ईश्वरीय राज्य में। पहले माना कब? यज्ञ के आदि में भी ईश्वरीय राज्य में थे और अब भी ईश्वरीय राज्य में हो। ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने के लिए। वो कहते हैं आया था और तुम कहते हो आया है। काहे के लिए आया है? नई दुनिया का राज्य स्थापन करने के लिए आया है। ईश्वर तो राज्य नहीं करते हैं, ईश्वर राज्य स्थापन करते हैं लेकिन खुद राज्य
नहीं करते हैं।
खुद राजा ही नहीं लेते, राजा ही तुम बच्चों को देते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। तो ऊंचे तो ऊंचे है ही भगवान, सब आत्माओं का बाप है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में खुशी होती है, बाबा कहने से तुम्हारी खुशी का पारा एकदम ऊपर चढ़ जाना चाहिए। 29 जनवरी 1967 का प्रातः क्लास 30 रुपये। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था की गाई हुई है क्या? अभी तुम्हारी अंतिम स्टेज नहीं है, अभी तो अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। जब परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं उस समय साफ साक्षात्कार होता है और अतीन्द्रिय सुख भी सबका नंबर वार है क्या? एक जैसा अतीन्द्रिय सुख सबका नहीं हो सकता। कोई तो बाप की याद में रह करके बहुत खुश रहते, बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते, वाह बाबा आपसे कितना हमको सुख मिलता है, आपको जान करके आपसे हमको कितना सुख मिलता है, कमाल है, आप हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो, तुमको सारा दिन ये फकुर रहना चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितना गदगद हो जाते हो, शिव बाबा हमको राजयोग सिखाए रहे हैं, बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, मनुष्यों की बुद्धि में कितनी तमो प्रधानता है और तुम्हारी बुद्धि कितनी सार्थक होती जाती है। शिव बाबा जो पुनर्जन्म रहते हैं उनकी बदले पुनर्जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़ी से बड़ी एक ही है भूल है क्या?
कृष्ण का नाम डाल दिया।
शिव बाबा जो पुनर्जन्म रहते हैं, शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं होता हुँ? बाबा ने तो मुरली में कहा है कि सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, तो शिव बाबा जब इस सृष्टि में सदा कायम है तो पुनर्जन्म लेगा या नहीं लेगा?
लेगा
है?
लेकिन वो कोई देखता नहीं।
माना उस दुनिया की बात नहीं है, ये वर्तमान संगम युग की बात है कि जो निश्चय में है वो जैसे जन्म है उनका, और जो अनिश्चय में है उनकी जैसे मृत्यु हो गई। तो शिव बाबा पुनर्जन्म रहते हैं, शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं होता। उनके बदले बहुत जो सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय में आता है, अभी अभी निश्चय में और अभी अभी जाके गुलजारदार में प्रवेश कर जाएंगे, अनिश्चय आया और फट से जाके उधर प्रवेश करते। सबसे जास्ती पुनर्जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, बड़ी से बड़ी यही एक अज भूल है, नंबर वन गीता में ही भूल कर दी, और शास्त्रों में भूल वो बात नहीं, जो नंबर वन शास्त्र है उसमें बड़ी से बड़ी भूल कर दी, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। बाप आकर के भूल बताते हैं कि पतित पावन तो मैं हूं या ये कृष्ण है,
शिव बाप
तुमको मैंने राजयोग सिखलाया, मैंने तुमको देवता बनाया, गायन भी मेरा है ना, अकाल मूर्त कालों का काल
महाकाल,
कृष्ण की ये महिमा थोड़े ही है, वो तो जन्म मरण में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबर वार है जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती, ज्ञान के साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए, माया भी कोई कम नहीं है, जो पहले आवेंगे वो जरूर इतने ताकत वाले होंगे। क्या कहा? कहां आवेंगे पहले? ज्ञान में भी पहले आवेंगे और सतयुग में भी, नई दुनिया में भी पहले आवेंगे, जो जितने पहले आवेंगे उतने जास्ती पावरफुल होंगे और जितने बाद में आवेंगे उतने कम पावरफुल होंगे। पहले कृष्ण आएगा, कौन सा कृष्ण आएगा?